الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقالوا، انہوں نے کیا کہا؟ اچھا، آپ بجائے اس کے پر شکر، آپ سوچیں نا آپ کتنا شکر ادا کریں اگر واقعی ریلائزیشن ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، باقی لوگوں کے اوپر کتنا خطرہ ہوتا ہے یا کچھ ہے، اور ہم دیکھیں کتنے آرام سے جاتے آتے ہیں اور سب ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب، باعث بینا سوارینا، دور کر دینا ہمارے سفر، ہمارے سفر دور کر دے. کیوں، ایسا کیوں انہوں نے کہا؟ لیکن ایسا کوئی ایڈونچر تو ہے ہی نہیں ہے، کوئی ایڈونچر ہونی چاہیے، کوئی مزہ آئے، رستے میں کوئی شیر آئے، کوئی چیتے آئے، کوئی اس طرح آئے، کوئی لٹیرے آئے، ہم ان کے ساتھ پھر فائٹ کریں، پھر ایسے ہو، پھر یہ ہو، پھر دور دور بستی نہ نظر آئے، اتنا مزہ آئے، پھر ہم جائیں اور پھر راستے کے اندر کتنی کتنی مشکلات سے گزر گزر کے ہم وہاں پہ پہنچے، کتنی مزے کی بات ہے نا. یہ نا اصل میں انسان کو بعض دفعہ نعمت راس نہیں آتی نا، جیسے ہمیں کئی دفعہ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اچھی شکلیں دی ہیں، ان کو چڑیلیں بنا کے کھڑا کر دیتی، ہالوین ہو رہی ہے جی، شکلیں بد شکل کر کے کھڑے ہو جاؤ. اللہ نے گھر آباد دیے، ان کے گھروں کے یارڈ کے اندر قبریں بنائی ہوئی، ان کے اندر بھوت پریت کھڑے کیے ہیں. اور بھی کئی چیزیں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوتی ہیں، گھر کے اندر کھانا پینا بڑی فراوانی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں وہ مزے کا تو وہ ہے نا، وہ جو گندا منگدا مکھیوں والا اور گندے ہاتھوں سے لوگوں نے بنایا ہوا، اب پتہ نہیں کیسے پیچھے بنا رہے ہیں، وہ والا کھانا اس میں بڑا مزہ آتا ہے. اب دیکھ لیں، مطلب ہے کہ ایک بات نہیں، بہت ساری باتوں میں ہم بھی ایسی ہی نا شکریہ کرتے ہیں. کوئی ایڈونچر ہونا چاہیے، کوئی اس طرح مزہ آنا چاہیے. اچھا، پھر ایسی ہارر موویز دیکھیں گے جس سے خود کو ڈرائیں، ایسی رائڈز میں بیٹھ جائیں گے جس میں جان حلق میں آ جائے اور اتنی چیخیں مارے، اتنی چیخیں مارے، وہ ہمیں مزہ آ رہا ہے اس کے اندر. پتہ نہیں ہم کیسے لوگ بن گئے ہم نا. اب دیکھیں، یہ بات ابن عاشور کہتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے انبیاء اور صالح لوگوں کے جواب میں کہی تھی. انبیاء نے کہا دیکھو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے سفر دیے ہیں، کتنے پرامن ہیں، کتنے تم آرام سے جاتے ہو آتے ہو، آسان کر دیے، تم اس کے پر شکر ادا کرو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر لے لے اللہ ہم سے یہ نعمت، ایسی ناشکری کی بات کی، لے لے اللہ ہم سے نعمت. دوسری بات یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ انہوں نے منہ سے نہیں کہا تھا، زبان حال سے کہتے تھے، یعنی اپنی حالت سے بتاتے تھے کہ یہ نہیں، ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، ہمیں تو وہ والے اچھے لگتے ہیں جس میں ایسی ایڈونچر ہوتی ہے. تیسری بات یہ کہ انہوں نے، جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے منہ سے بھی کہا، ایک منہ سے کہنا ہوتا ہے، ایک منہ سے نہیں بھی کہتے، لیکن زبان حال سے کہہ رہے ہوتے کہ انسان چاہتا ہے کہ بس اس طرح کا ہو جائے تو اچھا ہے. فظلموا انفسہم، انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر یہ کہہ کے، ایک تو رسول کی بات نہیں مانی، شکر بھی نہیں کیا، توحید پہ بھی نہیں آئے، شرک پہ بھی پڑے رہے، دوسرا یہ بھی ظلموا انفسہم کہ انہوں نے ایسی باتیں کہیں، تیسری یہ بھی کہ زبان حال سے کہتے تھے، ان کی حالت بتاتی تھی، جیسے آج ہماری حالت بتاتی ہے نا کہ ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، ہم منہ سے تو نہیں کہتے کہ ہمیں پرواہ نہیں، ہماری زبان حال بتاتی ہے، ہماری حالتیں، جو ہماری لائف سٹائل، جو ہمارا تھنکنگ، جو ہمارا عمل ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں، ہم منہ سے تو نہیں کہتے. اور اسی طرح ہماری زبان حال بتاتی ہے ہمارا آخرت پہ ایمان ہی بہت کمزور ہے یا ہے ہی نہیں ہے، یہ منہ سے تو نہیں ہم کہتے، ہماری حالتیں بتاتی ہیں. تو یہ حالت انسان کی بتاتی ہے. تو جب وہ ایسی بات انہوں نے بولی، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو افسانے بنا دیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھولی بسری داستان،
کہ پھر عرب ان کی تباہی کے ہی کچھ قصے سناتے تھے ایک دوسرے کو، آگے سے آگے جنریشن ٹو جنریشن پاس ہوتے تھے، جی ایک ایسی قوم ہوتی تھی، کیونکہ جب ایسا ہو گیا کہ ان کے اوپر تباہی آ گئی، ہر طرف یعنی اجاڑ اور ویرانہ ہو گیا اور سب کچھ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، تب وہ تھوڑی وہاں پہ رہ سکتے تھے. پھر اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے، پھر کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، اسی لیے فرمایا وہ مزقناہم کل ممزق، کہ ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا، پوری دنیا میں تتر بتر. انہی میں سے اوس اور خزرج تھے، پتا نا آپ کو، اوس اور خزرج یمن سے ہی آئے تھے نا، تو یہی تھے انہی میں اوس اور خزرج، اور بھی ان کے قبائل تھے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے. ظاہر ہے 10 بیٹوں کی اولادوں میں سے 6 یہاں پہ تھے، تو ان کی اولادوں میں سے آگے کئی قبیلے بن گئے. اب وہ دنیا میں جگہ جگہ بکھر گئے، اور یہ اوس اور خزرج تھے جو مدینہ آ کے پھر آباد ہوئے تھے. سمجھ آئیے اب آپ کو بات، وہ یہ نیٹو یہاں کے نہیں تھے، یہ پھر یہ بھی آ کے آباد ہوئے، جیسے یہود آ کے آباد ہوئے تھے نا، اس طرح یہ. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں ہے البتہ نشانیاں اس کے لیے ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے. ایک نہیں ہے، کئی نشانیاں ہیں. شکور بھی مبالغہ ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا. صبار بھی مبالغہ ہے. صبر کیا ہوتا ہے؟ سختیوں پہ، مشکلوں کے اوپر انسان برداشت کر لے اللہ کی رضا کے لیے. اور شکور بھی کیا ہے؟ نعمت کو انسان اس کا اعتراف بھی کرے، اللہ کی تعریف بھی کرے بہت، اور اللہ کی فرمان برداری میں بھی اس کو صرف کرے. یہ ہے شکور. اب ان کے اندر نہ تو صبر تھا نہ شکر تھا، نہ انہوں نے صبر کیا مشکل کے اوپر، اور نہ یہ جب ان کو نعمتیں ملی تھی نہ انہوں نے اس وقت شکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ہر حال میں اس کے بھلائی ہوتی ہے. اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کر کے نیکی کما لیتا ہے، اگر اس کو کوئی غم پہنچتا ہے تو صبر کر کے نیکی کما لیتا ہے. مومن تو ہر حال میں ہی، یا تو وہ صبر والا ہوتا ہے یا شکر والا، کیونکہ ہر وقت یا تو ہمیں کوئی نعمت مل رہی ہے یا کوئی نعمت ہم سے جا رہی ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. جب وہ دے کے آزمائے تو تب کیا کرنا؟ شکر. جب وہ لے کے آزمائے تو تب کیا کرنا؟ صبر. یہ جو دو چیزیں ہیں یہ مومن کے اندر ہوتی ہیں، یہ مومن کا خاصہ ہے، یہ مومن کی صفات ہے، اور اس کی وجہ سے مومن آلویز ونر ہوتا ہے، کبھی لوزر ہوتا ہی نہیں. کیونکہ وہ جب اسے نعمت چھنتی ہے تب بھی وہ صبر کر کے گین کر رہا ہوتا ہے نیکی، جب اس کو نعمت ملتی ہے تو نعمت بھی مل رہی ہے اور ساتھ شکر کر کے بھی نیکی کما رہا ہے. تو دونوں حالتوں میں وہ تو بڑے مزے میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں نشانیاں ہیں، جو سیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھو ان کو نعمتیں ملی تب، اور جب نعمت چھن گئی تب ان کے رویے کیا تھے، وہ کیا کرنے والے تھے. تو اس لیے انسان کبھی بھی یہ نعمت پا کے نا غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو، بلکہ کوئی بھی آپ کو اگر مثال کے طور پہ آپ کو کوئی نیک نامی کی نعمت مل گئی، یہ بھی ایک نعمت ہے، تو اس پہ پھول نہ جائیں کہ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں آپ تو بڑے نیک ہیں، یا آپ تو بڑے نائس ہیں، یا آپ تو اخلاق بڑا، ہاں جی میں تو جی ایسے، میں تو یہ، میں تو وہ. نہیں، ہاں من فضل ربی. کبھی کسی تعریفوں کے اندر نہ آ کے دھوکے میں نہ آئیے گا، کبھی نہ آئیے گا. لوگوں کی تعریفوں کا تو یہ حال ہے کہ آج ایک کی تعریف کریں گے نا، کل اسی کی برائیاں کر رہے ہوں گے. اب اس کے سامنے اس کے تعریفوں کے پل باندھیں گے، اس کی پیٹھ پہ جائیں گے، کہیں گے ویسے یہ چیز نہیں اس کے اندر صحیح. تو کبھی دھوکا نہ کھائیے گا لوگوں کی تعریفوں سے. لوگ تو آج کچھ تو کل کچھ، سامنے کچھ پیچھے کچھ. اس لیے اس میں تو غرور پہ آنے کی بات ہی نہیں کبھی. اور بھی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں بھی غرور و تکبر کی ضرورت نہیں. انسان ہمیشہ یاد رکھے اپنا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھے کہ میں اللہ کے ہاں کیسا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر یہ کرم ہے، یہ فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہوا. نہ میرا حق تھا، نہ میری قابلیت تھی، نہ میں ڈیزرو کرتی تھی. دیکھ لیں ان کا انجام کیا ہو، इस अंजाम से हम सबको डरना है कि देखिए जब अल्लाह ताला दे के आजमाता है ना, तो फिर अगर इंसान नाकाम हो जाए और फिर वो नेमत छीन भी जाया करती है, इससे हमें डरना है कि मेरे से नेमत छीन ना जाए। और याद रखें, जब नेमतें बहुत ज्यादा हो ना, मिसाल के तौर पे कोई बहुत ऊंची इमारत के ऊपर चला जाए, वहां से अगर नीचे गिरेगा तो क्या हाल होगा, हड्डी पसली सारी टूट जाएगी। और जो कोई नीचे ही है, वहां से गिर गया, एक स्टेप लिया था उसने नीचे गिर गया, तो इतना कुछ नहीं है नुकसान होना। इसी तरह जो बहुत नेमतों के अंदर रहने वाले हैं ना, जब उनसे नेमत छिनती है तो वो बहुत जोर से चोट लगती है उनको, बजाय उसके जो जिस बेचारे के पास कुछ है ही नहीं। देखिए, एक बंदा पहले लुटा पुटा है, उसके पास से कुछ और भी कोई काम हो गया, तो इतना चोट तो उसको भी लगती है लेकिन इतनी नहीं। लेकिन हमारे जैसे लोग जो हर वक्त नेमतों के आदि है ना, अल्लाह ना करे उनसे अगर नेमत कोई छिन जाए तो फिर अपने आप को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें ज्यादा ही कॉन्शियस रहना चाहिए कि हमसे कहीं नाशुक्री ना हो जाए। अल्लाह अकबर। और यहां से हमें सबर और शुक्र की फजीलत भी पता चलती है। वही इससे सबक लेंगे जो सबर वाले और शुक्र वाले होंगे। बाकी लोग तो इसको स्टोरी के तौर पे पढ़ के और आगे चल पड़ेंगे। जिसने सबर सीखना है वो यहां से सीखे, जिसने शुक्र सीखना है वो यहां से सीखे। ये जब अल्लाह ताला ले भी सकता है और दे भी सकता है। वलकद सद्दक अलैहिम इबलीस जन्नहु, अलबत्ता तहकीक सच पाया इबलीस ने अपना गुमान। इबलीस ने अपना गुमान सच पाया। कौन सा गुमान था जो इबलीस ने किया था? इबलीस ने कहा था, अल्लाह तो इनमें से अक्सरियत को शुक्र गुजार नहीं पाएगा। सूरह आराफ में है, अल्लाह तजीदु अक्सर हम शाकिरीन, तो इनमें से अक्सरियत को पाएगा कि ये ना शुक्रे हैं। इस आदम की वजह से तूने मुझे तो धुतकार दिया ना, इसने भी इसकी औलाद ने तेरा शुक्र नहीं अदा करना, ये बनी आदम ने। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इबलीस ने जो उस वक्त अपना गुमान किया था ना, इट वॉज जस्ट स्पेकुलेशन थी उसकी, उसको यकीन नहीं था कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन उसने एक गुमान किया, उसने इसको सच पा लिया। कैसे? कि अक्सरियत वाकई नाशुक्री हो गई। उसने तो वहां पे बोला और उसके बाद वो आके इस काम में लग पड़ा और लोगों को बहकाने लगा, फत्ता का उन्होंने पैर भी कर ली उसके, लोगों ने सबने उसके पीछे चल पड़े, इल्ला फरीक मिनल मुमिनीन, से वाई एक गिरोह के मोमिनों में। तो इस कौम के बारे में जब हम देखें तो आया है कि ये नाशुक्री थी ना, तो इबलीस ने इनके बारे में अपना गुमान सच पाया, इन्होंने उसकी पैरवी की, इन्होंने नाशुक्री की। याद रखें, इबलीस के जो वार है ना, पहले तो उस चीज को समझे, सबसे पहले वो इंसान के अकीदे पे हमला करता है कि इसका अकीदा ना सही रहे, इसका ईमान खराब हो जाए, अकीदे में शक आ जाए इसके। क्योंकि जिसका अकीदा खराब हो गया, अकीदे में जरा सा भी शिर्क की आमेजिश भी आ गई, वो बंदा जो है ना वो तो हलाक हो गया, वो नहीं बच सकता। तो वो कहता है अकीदा से खराब कर लो, बाकी फिर बेशक जितनी मर्जी नमाजें हज रोजे करता रहे, अकीदा ही नहीं सही होगा, सब कुछ फ्लैट जीरो मल्टीप्लाई विद जीरो हो जाता है। तो अकीदे में वो आपके शक डालता है। फिर अगर इंसान अपना अकीदा सही कर ले तो फिर उसको गुनाहों में डाल देता है, वो अल्लाह की नाफरमानियां करवाता है, उस तरफ लेकर जाता है, उस तरफ रागिब करता है, उनको खुशनुमा बन के पेश करता है, गुनाहों को बड़ी ब्यूटिफिकेशन देता है, गुनाह इंसान को अच्छे दिखाता है कि इसमें कितना मजा है, ये कितनी जिसको कहेंगे मॉडर्न बात है, ये कितनी अपडेटेड बात है, ये देखो कितनी जबरदस्त मजे की बात है, इसमें कितना मजा है। गुनाह की तरफ ना अट्रैक्शन पैदा करता है। फिर अगर इंसान फिर भी उसकी जाल में नहीं आता तो फिर नेकी के रास्ते में रोड़े अटकाता, नेकी नहीं करने देता, नेकी के रास्ते को मुश्किल बनाता है इंसान के लिए। ऐसे लगता है हाय ये क्लास लेनी भी, हाय कैसे बैठेंगे, हाय कैसे करेंगे, हाय कैसे होगी, इतने हमारे तो काम है। यानी नेकी के हर काम को ना, नमाज मुश्किल हो, बोझल हो जानी, वो क्या करें, नींद बहुत आ रही, थकावट बहुत हो गई है, कोई भी नेकी का काम ना इतना भारी बना देता है, इतना उसको जो है ना इंसान के लिए मुश्किल बना देता है कि लगता है उसको कि मैं कर ही नहीं सकता। हाँ जुमरा है, कैसे, बड़ी थकावट, बड़ी ये होती है, मुश्किल बड़ा है, इतना पैसा लग जाएगा, है ऐसे हो जाएगा, कुरान पढ़ना है, मैं तो सर में दर्द हो जाता है, या तो मुझे कोई चीज रहती नहीं, कितनी तावीले ना ये सारी शैतान डालता है जहन के अंदर। अमल करना तो है ही बड़ा मुश्किल, वो तो हो ही नहीं सकता, हमसे तो होगा ही नहीं अमल। तो इस तरह से नेकी के रास्ते में रोड़े अटकाता, अगर इंसान फिर भी नेकी कर ही जाए तो उसमें खुद पसंदी डाल देता है, रियाकारी डाल देता है, किस तरह से इस नेकी को जाया करा दूं, तकब्बुर डाल देता है। अच्छा इंसान को कभी रियलाइज हो भी जाए ना, मिसाल के तौर पे ये रियलाइज हो जाए कि मेरी नमाजें सही नहीं है, मुझे लगता है मुझे अपनी नमाजों पे वर्क करना है, फौरन दिल में क्या ख्याल आता है, लो कई लोग तो नमाजें पढ़ते ही नहीं, कम अज कम मैं पढ़ती तो हूं ना, लो जी खुद पसंदी आ गई ना, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं पढ़ तो रही हूँ ना एटलीस्ट। वहीं पे आपकी जो आगे बढ़ने की आपकी नेकी की रफ्तार है वो वहीं पे जीरो हो गई, आप वहीं पे रुक गए, आपको नेकी के में आगे बढ़ने का जज्बा ही खत्म हो गया। हाँ तो हम इतनी नेकियां तो करते ही हैं, अब और क्या करें, मुझे तो समझ ही नहीं आती, ये किसका ख्याल है डाला हुआ, शैतान का, कि यानी अब आपको समझ ही नहीं आ रही थी तो पूरे ऑल इन ऑल आप तो कामिल हो गए भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये नहीं फरमाया था कि मुझे तो समझ ही नहीं आती मैं और नेकी क्यों सी करूं, लेकिन हम इतने कामिल हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही, तो हमारी फिर समझ ही खराब है। इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट पे पहुंच गए ना कि हमें समझ नहीं आ रही कि नेकी और कौन सी करनी चाहिए, तो हमारी समझ खराब हो चुकी है, शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया हमारी सोच के ऊपर, और वो ही हमें दिखा रहा है कि बस तू काफी है, तू बड़ा अच्छा है, यहीं पे खड़ा रहे, आगे तो जो बढ़ने की क्या, और आगे तो कोई नेकी का रास्ता और रह ही नहीं गया, तू टॉप पे पहुंच चुका है, आपने समझ लिया है ना कि आप टॉप पे पहुंच गए, क्योंकि आगे तो कुछ भी नहीं है, तो यहीं से अब आपकी आगे बढ़ने की सारी चीजें खत्म हो गई, कोई जज्बा नहीं रहा और आप स्टेगनेंट हो गए, फिर डाउनफॉल ही है, इसके बाद ऊपर तो नहीं जाना अगर, क्योंकि एक जगह पे नहीं इंसान रहता, या तो नीचे आ रहा होता है या आगे बढ़ रहा होता है, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे ना तो नीचे जरूर जा रहे हैं। तो ये है शैतान के हरबे, उन्होंने ये इनको नेमतें इतनी मिली, नेमतों में ही तो वो नाशुक्री करा देता है, बस इंसान का बेड़ा गर्क हो गया, जो नेमतें दिए गए हैं उनको कितना होश संभालना चाहिए नायाब के साथ, कि शैतान ने अपना गुमान उनके बारे में सच पाया कि ये नाशुक्री इनसे करा दो, नाशुक्री करा दी, नेमतें भी गई, अल्लाह ताला के हाँ भी बबाल, आखरत में भी बबाल, दुनिया में भी अल्लाह की नाराजगी, और नेमतें भी छिन गई, क्या रह गए वो, इतनी खुशहाली के बाद तितर बितर दुनिया में घूमते फिर रहे हैं, जाहिर है जहां पे भी जाएंगे रेफ्यूजी ही होंगे, वो वाली नेमते थोड़ी कहां वहां रहते थे, कितने मजे में थे, कहां कहीं और जाके लुटे पुटे पहुंचे, वहां पे अपने आप को फिर इस्टेब्लिश करना, स्टेबल करना, अपने आप को आगे बढ़ना, वो तो बड़ा टाइम लगेगा, कितनी जनरेशन गुजर जाएंगी, आसान थोड़ी होता है। तो ये भी मुंतशिर हो जाना दुनिया में, ये भी एक इंसान के लिए अजाब ही है, नेमत तो यही है कि इंसान जहां बैठा हुआ वहीं पे उसको कितना कुछ मिल रहा है ना, कि सामान उठाए उठाए दुनिया भर में जलील होते फिर रहे हो। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान ने अपना गुमान उनके बारे में सच पाया, उन्होंने उसकी पैरवी करी सिवाय एक फरीक के, एक ग्रोह के, मोमिनों के, और वाकई वो तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो मेरे प्यारे बंदे होंगे ना, मुखलिस बंदे होंगे, वो नहीं तेरे पीछे आएंगे। तो वाकई कुछ लोग ही होते हैं, और इनमें भी, इसका मतलब है इस कौम के अंदर भी कोई लोग ऐसे थे जो शुक्र गुजार थे, एक मोमिनों का ग्रोह जरूर था, लेकिन याद रखिए जब किसी कौम में अक्सरियत ना शुक्री हो जाती है ना, तब उनके ऊपर अजाब आ जाता है, वो जो अकलियत होती है उसकी बेस के ऊपर नहीं अजाब रुकता, ये अकलियत तो शुक्र गुजार, अक्सरियत, जब अक्सरियत का हाल बुरा हो जाए ना तो फिर अल्लाह की पकड़ आती है। अकलियत में तो पैगंबरों के जमाने में भी मोमिनीन हुआ करते थे, लेकिन अक्सरियत की वजह से अजाब आता था ना, आज भी अक्सरियत अगर कौम की ऐसी है जो बेराहोरी पे लगी हुई है, ऐसे इलाके भी हैं जिनमें इतनी खुशहाली है, लोग कहते हैं वहाँ पे मौसम इतना अच्छा है, वहाँ पे इतना हर चीज़ ज़बरदस्त है, सड़कों का निज़ाम भी और तरक्की भी इतनी ज़्यादा है और रिस्क की फरावानी भी इतनी है, लेकिन वहाँ पे लोग अल्लाह ताला माफ़ करे कौम लूत वाले अमल को जायज़ किया है, उनके दरमियान शादियाँ हो रही हैं और इनको इतनी आज़ादी दी गई है कि मतलब हर तरफ उनका दौर दौरा है, तो आप खुद फिर आवाज दे रहे हैं ना आज आपको कि देखिए नेमते पाके क्या करना चाहिए था, शुक्र गुजारी, और नेमत पाके क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी। ये अब आपको समझ आई कि जो नाफरमानी है, जो गुनाह है, ये नाशुक्री होते हैं, और गुनाह जो है अजाब को दावत देते हैं, नाशुक्री भी गुनाह है और गुनाह अजाब को दावत देता है, तो कभी नाशुक्री नहीं हमने करनी, हर वक्त अल्लाह की रजा में राजी रहना, या तो हम सबर की स्टेट में हो या शुक्र की स्टेट में। वमा कान लहु अलैहिम मिन सुल्तान, और ये ना समझे कि वो जो बेचारे लोग उनको तो शैतान ने जबरदस्ती ये करा दिया, नहीं, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि शैतान का उनके पर कोई जोर थोड़ी था कि उनको गन पॉइंट के ऊपर नाशुक्रियां करा दी, उनको जो है ना गन पॉइंट के ऊपर ये नाफरमानियां करा दी, नहीं, बल्कि वो खुद ऐसे करने वाले थे। अल्लाह ताला ने फिर उन्होंने शैतान को इतनी छूट क्यों दे दी, हमें ये फॉरन क्वेश्चन आता है, अल्लाह ताला ने फिर उसको इजाजत ही क्यों दी, इसलिए इल्ला लिनअलम मन युमिनु बिल आखिरति मिम्मन हुवा मिन्हा फी शक, इसलिए कि हम जान लें कि कौन है जो आखरत पर ईमान रखता है और कौन है जो उसके बारे में शक में है, इसलिए ताकि अल्लाह ताला को तो पहले ही पता है, फिर क्यों यहाँ पे कहा गया, इसलिए कि अल्लाह ताला सब के आगे वाज़े कर दे, हुज्जत तमाम हो जाए, क़यामत के दिन कोई ये ना कह सके नहीं अल्लाह तूने तो मुझे आजमाया नहीं, आजमा के मुझे देखता तो पता चलता, जैसे दुनिया में लोग कह देते ना आजमा के देखो मेरी मोहब्बत को, आजमा के देखो इसको, फिर तुम्हें पता चलेगा मेरा जज्बा कितना है, मैं जान देने को तैयार हूँ, मैं ये करने को तैयार हूँ, वो सारा कुछ पता चल जाता है जिस वक्त इंसान अमली मैदान में आता है, जब कभी टेस्ट किया तो पता चला कि नहीं ये असलियत तो कुछ और थी, जाहिर ही बात है जब आपके ऊपर टेस्ट आएगा तो पता चलेगा ना कितने शुक्र गुजार थे, कितने नाशुक्र थे, कितने सब्र वाले थे, कितने, ऐसे थोड़ी कि घर बैठे बोलते जाएं जी मैं बड़ी शुक्र गुजार हूँ, मुझे आजमा के देखा तो होता, तो इसलिए अल्लाह ताला ने शैतान को खुली छूट दी हुई है कि जो वो वसवास डाल सकता है, वो उम्मीदें दिला सकता है, जैसे नुमान बिन बशर मिंबर पर कहते हैं कि बेशक शैतान के पास फरेब है और जाल होते हैं, और उसका फरेब और जाल क्या है कि इंसान अल्लाह की नेमतों पे मगरूर हो जाए, उसके दिए हुए पे फखर करना शुरू कर दे, और अल्लाह के बंदों पे तकब्बुर करना शुरू कर दे, और अल्लाह की जात के अलावा ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे, यानी अल्लाह के हुक्मों को छोड़ के अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े, अल्लाह की इबादत को छोड़ के अपनी मर्जियां करना शुरू कर दे, जिसको दिल चाहे उसकी इबादत शुरू कर दे, और क्या है मगरूर हो जाए, और क्या है फखर करना शुरू कर दे, तकब्बुर करना शुरू कर दे, ये शैतान की चाल है, उसके फरेब है, उसके जाल है, इन जाल में वो फंसाता है इंसान को, तो वो इतना ही कर सकता है, वो जैसे मैंने आपको कहा गुनाहों को खूबसूरत बना के दिखा सकता है, आपके जहन के अंदर डाल सकता है कि वो देखो ऐसे बन के जाऊंगी ना तो मैं कितनी खूबसूरत लगूंगी, और ऐसे मैं चलूंगी तो कैसी लगूंगी, और ये चीज है ना ये बड़ी अच्छी है, इसमें आप कितने अप टू डेट नजर आते हैं ना, और ये देखने में कितना मजा आता है और बड़ा फन है इसमें, ये सारी आइडियाज कौन डाल रहा होता है, शैतान, वो हमारे अपने नहीं होते, अपना नफ्स भी होता है, इंसान का अपना नफ्स भी दुश्मन है, लेकिन शैतान फीड करता है, शैतान फीड करता है, वो ये उसका होता है, ये इस तरह से इंसान को फंसाता है, तो जब शैतान ऐसे आइडियाज डालता है तो उसका जोर कोई नहीं है, अल्लाह ताला ने बस इतना ही उसको इख्तियार दिया ताकि अल्लाह ताला देख ले कौन है जो आखरत पर ईमान रखता है, वो तो नहीं इसकी बात को मानेगा, क्योंकि उसको डर होगा ना मैंने अल्लाह के आगे जवाब देना, और कौन है जो आखरत के बारे में शक में है, जाहिर है पता नहीं आती है कि नहीं आती, क्या पता नहीं आए, हम क्यों अपना फन छोड़े, हम क्यों अपने मजे छोड़े, और देखे बाद में अल्लाह गफूर और रहीम है, बाद में माफ कर देगा। इंसान को ये बड़ा होता है कि नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो कर लेना, वहां पे सबकी माफी हो जानी है, जन्नत में तो हमने चले ही जाना है। ये सारे शकूक है आखरत के दिन के बारे में। आखरत का अकीदा सही होना बहुत जरूरी है। आखरत का अकीदा मेरी और आपकी विशेष के ऊपर नहीं हो सकता कि हमारा दिल ये करता है कि बस जन्नत हमारी हो जाए, वहां पे ना हमारी कोई पूछ पड़ताल हो, ना हमारे से कोई हिसाब हो, बस हम भागते चले जाएं जन्नत के अंदर, दम लें तो वहीं जाके लें। ये मेरी और आपकी विशेष पे नहीं, ख्वाहिशात पे नहीं हो सकता। जो अकीदा सही है वही रखना चाहिए, और आगे उसकी बात भी आ रही है। तो अल्लाह ताला देखेगा जिसको, तो आखरत के बारे में शक होगा वो शैतान के पीछे चल पड़ेगा, वो जो इसकी साहटों में आ जाएगा। तो अल्लाह ताला ने तो इसको टेस्ट के लिए भेजा ना, ये हमारा टेस्ट है। अब कौन है जो इसके वसवास को पहचान के और समझता है कि मुझे अल्लाह ताला के आगे खड़े होना है, कयामत का दिन आना है, मैं नहीं ये कर सकता, और कौन है जो इसके पीछे चलता है, समझाइए। और अब का आला कुल्ली शैन हफीज, और तेरा रब हर चीज पर निगेबान है। अल्लाह ताला तो देख रहा है वो कौन कितनी कोशिशें कर रहा है, कितनी मेहनतें कर रहा है, कौन शैतान के रास्ते पे जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, किसके दिल में ईमान है आखरत पे, किसके दिल में ईमान नहीं, किसके दिल में ईमान नहीं है या शक है कयामत के बारे में। और या ये बातें हैं कि कौन सा कोई अल्लाह ताला ने इतनी बात पे पकड़ लेना है, कौन सा या उसको पता चलना है, या अभी तक तो पकड़ा नहीं है, आगे भी नहीं पकड़ेगा। तो अल्लाह ताला पता चलता है कि अल्लाह ताला इंतकाम लेने वाला भी है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ऐसे ही छोड़ देता है, नहीं, अल्लाह ताला इंतकाम लेने वाला भी है। यहाँ से हमें पता चला इनके वाक्य, यहाँ तक हमें आयत 21 तक ये वाक्य खत्म हो गया। इसके अंदर से अब आप सबक निकालें कि आपको क्या सबक मिलते हैं, कितनी बातें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया आयात है सबार और शकूर के लिए। अगर मैं सबर वाली और शुक्र वाली हूँ तो मुझे इसके अंदर निशानियां नजर आएंगी, मुझे पता चलेगा कि देखो कितनी अजीम शान कौम थी कि इनके किस्से भी बाद में लोग सुनाते रहे, अफसाने बना दिए अल्लाह ताला ने, इनके किस्से जुबान दर जुबान लोगों के आगे चलते रहे। और देखो कैसे जुबान की एक बात इंसान के कभी कभी आगे आ जाती है, कभी जुबान से ऐसी बातें, जैसे उन्होंने कहा रब्बाना बाइद बैना अस्फारिना, कितनी नेगेटिव बात की। तो कभी इंसान की कही भी बात, जुबान का गलत इस्तेमाल इंसान की बर्बादी का बायस बन जाता है। नेगेटिव बातों से बचें। हर बात ये ना कहते हैं मुझे पता है ऐसा होना ही नहीं, मुझे पता है मेरे साथ तो कुछ अच्छा होना ही नहीं, मेरे साथ तो ये होगा, मुझे तो पता है कि कभी पहले भी नहीं अच्छा हुआ तो अब कैसे हो जाएगा। ऐसी बातें कभी ना बोले, क्यों नेगेटिव हम मुंह से निकालें, हमेशा पॉजिटिव बात निकालें, चाहे कोई नई भी उम्मीद हो तब भी पॉजिटिव बात कहें। तो यहां से हमें जुबान के गलत इस्तेमाल की बात पता चलती है, ये भी एक निशानी है। और ये भी एक निशानी है कि देखो इंसान के ऊपर जब मुसीबत आती है तो चाहे वो नहीं भी चाहते होंगे, लेकिन देखो कैसे फिर इंसान नापसंदीदा चीजों को भी करने पे मजबूर हो जाता है, उनको माइग्रेट करना पड़ा, वहां से जाना पड़ा, वहां से कैसे अल्लाह ताला आजमा लेता है इंसान को, चीजें दे के भी आजमाता है। हम तो यही हर वक्त समझते रहते हैं किसी के ऊपर मुसीबत आई तो कहते हैं इसकी बड़ी आजमाइश है, कभी किसी को नेमत मिलते हुए हमने कहा है इसकी आजमाइश है, कभी भी नहीं कहते, बल्कि वो तो बड़ी अच्छी लगती है, ऐसे लगता है अल्लाह ताला का इनाम ही हो रहा। कोई ऐसी जगह पे रहता हो किसी के ऊपर तो लोग इतनी हसरतें करते हैं, हाय देखो कितनी अच्छी जगह पे रहता है, कितनी खुशहाली है उसको, रेस की रेल पेल है उसके, हाँ और सब कुछ अच्छा उसका चल रहा है, कभी नहीं सोचते कि ये भी उसके लिए टेस्ट है। फिर और भी निशानी, मुतमईन कभी ना हो जाए, मुतमईन कभी भी ना ये सोच के बैठ जाए कि हमेशा मेरे पास ये सब कुछ रहेगा, हमेशा नहीं रहता। कभी इस चीज के लिए भी तैयार है कि अगर मेरे से कोई चीज छिन जाए तो भी मैंने सबर करना है, ये मेरी मेरी नहीं है, ये सब चीजें ये तो मुझे अमानतन दी गई है, ये तो किसी की दी हुई है, उस रब की दी हुई है, मेरी थोड़ी है। अल्लाह, और ये भी सबक है कि अल्लाह ताला चाहे तो आबादियों को वीरानियों में बदल दे, सिर्फ फर्द के ऊपर नहीं कौमों के ऊपर भी जवाल आ जाया करता है। ये फर्द की नहीं सिर्फ बात हो रही। फिर हमें ये भी पता चलता है कि देखो इबलीस ने, उसकी कन्विक्शन थी ना कि मैं ये नाशुकरा होगा, एक कन्विक्शन तो उसने काम शुरू किया ना, और उसने उसको सच कर दिखाया। यानी इतनी उसने मेहनत की, इतनी उसने मेहनत की, और उसने उस जो अपनी जिद में उसने बात कही थी ना वो करके छोड़ी, सच करा के छोड़ी, अपनी बात को सच्चा करके छोड़ा। हालांकि वो झूठा है,